मीडिया का क्या स्थान है? क्या है वो संबंध अभिधेय प्रयोजन? क्या बोले? सो सभी वेदों के यही सार है और भगवद गीता का भी सार वही है, ठीक है संक्षेप में। संबंध, कृष्ण संबंध मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्या क्या आता है इसमें बताइए। जीव, जीव और भगवान के बीच में संबंध, भगवान के शक्तियों का ज्ञान, कैसे भौतिक प्रकृति जीव को इस भौतिक जगत में बांध देती है, ये सब संबंध ज्ञान में आता है, ठीक है ठीक है। अभिजय मतलब भक्ति और प्रेम संयोजन। और कौन कौन से तीन विभाग है भगवद गीता के? ऐसे भगवद गीता को तीन भागों में विभाजित किया गया है, तो कौन कौन से अध्याय? क्यों भक्ति को बीच में रखा गया है? एक एक करके कौन बोलेंगे? तो भक्ति क्या है? राज विद्या है। दूसरा वो स्वतंत्र नहीं है, उनका भक्ति का संपर्क होना चाहिए, इसलिए भक्ति को बीच में रख गया। और सार है ना, या वो कर्म और ज्ञान क्या है, वो आवरण है भक्ति को बचाने के लिए, क्योंकि मायावादी लोग इसको गलत अर्थवाद दे सकते हैं, ठीक है ये सब कारण है ना क्यों भक्ति को बीच में रखा। तो अभी हम लोग फिर बाद में हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रॉपर वहां पर बोलते हैं ये तीनों विभागों का भी सार क्या है, वो भक्ति है। और प्रश्न उठता है अभी, ठीक है ये तीनों विभागों का सार है भक्ति, लेकिन अन्य अध्यायों में कुछ और विषय का वर्णन हुआ है, क्यों हम भक्ति का ही पालन करना चाहिए, ऐसे कुछ लोग बोल सकते हैं, है ना। इसलिए भक्ति पूरा भगवद गीता का ही निष्कर्ष है, वो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब हर एक अध्याय में भक्ति का ही गुणगान किया है, पूरा भगवद गीता का सार या कंक्लूज निष्कर्ष क्या है, वो भक्ति है। सिर्फ ये तीन विभाग का सार ही नहीं, पूरा हम लोग वो 18वें अध्याय से वो चर्चा कर रहे थे, 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के तात्पर्य से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तीनों विभागों का सार क्या है, वो भक्ति है। लेकिन पूरा भगवद गीता का जो निष्कर्ष है वो भक्ति है, वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। भक्ति भगवद गीता का निष्कर्ष। सो उस जब हम लोग उस तात्पर्य पढ़ रहे थे उसमें भी आता है, हम लोगों ने पढ़ा ना उसको 18वें अध्याय के 78वें श्लोक के तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें भी आता है। पहले श्लोक में है वो, या पहले श्लोक में है ना, तीन विभाग, या पहले श्लोक वो खोलिए, 18वें अध्याय का पहले श्लोक। वहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे ना तीन भागों का विभाजन का सार। हम लोगों ने पढ़ा उसको, फिर भी एक और बार पढ़ेंगे। भगवद्गीता के तृतीय खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसी इसी की स्थापना की गई है। तो जीवन का चरम, एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य, तृतीय खंड मतलब तीनों विभागों का सार क्या है, भक्ति। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि पूरा भगवद्गीता का सार यही है, पूरा भगवद्गीता का निष्कर्ष यही है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जताते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को ही समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद्गीता में भी इसी का व्याख्या है। इसका अर्थ है पूरा भगवद्गीता का व्याख्या क्या है, निष्कर्ष क्या है, परपट क्या है, वो भक्ति है। तो हमें इसको जानना चाहिए। लोग आपको ऐसे, मैं भगवद्गीता से क्रिया योग सिखाऊंगा, भगवद्गीता से राजयोग सिखाऊंगा, भगवद्गीता से ये सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा, ये उनको उसको मानना नहीं चाहिए। फिर ये चीज क्यों वर्णन किया गया है भगवद्गीता में, वो प्रश्न होता है ना, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे, चर्चा करेंगे, पहले ये खत्म करेंगे। फिर 4वें अध्याय के 38वां श्लोक खोलिए। When we speak of transcendental knowledge, मिल गया, पढ़िए उसको। ललित कृष्ण,
जब हम किसी ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। इस संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान,
वन मिनट, अभी हम लोग ओके पढ़िए पढ़िए।
जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावना व्रत में होता है।
है ना, वो जानते हैं ना, कल्मिनेट्स इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भगवद्गीता का तो भगवद्गीता के संदेश का यह चरम परफेक्शन, लास्ट वर्ड, अंतिम कंक्लूजन, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन ना, लास्ट वर्ड, अंतिम शब्द, तो वो क्या है, वो भक्ति है। तो फिर 11वें अध्याय के पहले श्लोक खोलिए। सॉरी 12वें अध्याय का पहला श्लोक, 12वें अध्याय का पहला श्लोक। यहाँ पर इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता पढ़िए उसको मिल गए।
भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। सातवें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः आठवें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के नाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, छठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है।
तो यहाँ पर प्रभुपाद प्राय प्रत्येक अध्याय में हर एक अध्याय में भक्ति करना चाहिए, भगवान के आकर्षित होना चाहिए। आप अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक अध्याय आपको पता चल जाएगा कि हर एक अध्याय में भी। तो देखिए पहला अध्याय, पहला अध्याय तो इंट्रोडक्शन है, वहां पर भी आपको भक्ति मिलेगा क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, भक्त वत्सलता व्यक्त कर रहे हैं वहां पर, वो भी भक्ति है और अपने भक्त के प्रति वत्सलता प्रेम। और दूसरे अध्याय का निष्कर्ष भी वही है, बुद्धि योग, मतलब प्रभुपाद बोलते हैं ना भक्ति योग, या तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा। मत्परा मतलब भगवान के परायण होना, भगवत भावित होना पूरी तरह से। और तीसरे अध्याय में कैसे भक्ति का वर्णन किया गया है, मई संन्यास तानि सर्वाणि कर्माणि संन्यास च आध्यात्म चेतसा। आध्यात्म चेतसा मतलब भगवान की भावना, राइट अर्नर, स्पिरिचुअल कॉन्सियसनेस मीन्स कृष्ण कॉन्सियसनेस। चौथे अध्याय में कैसे बताया गया है, चौथे अध्याय का दसवां श्लोक है, अगला श्लोक अगवा चौथे जन्म कर्मच का अगला श्लोक दसवां श्लोक, वीतराग भय क्रोध मन्मया माम पाशिता बहवो ज्ञान तपसा पूत मद भाव मावता। तो ऐसे मन्मया माम उपाश्रिता, वहां पर भी भक्ति का वर्णन हुआ है। तो पांचवें अध्याय में कहां पर भक्ति का वर्णन हुआ है, भोक्ता राम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्यते। छठे अध्याय में योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तम। सातवें अध्याय आरंभ ही होता है ना, मैया असक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथाज्ञा। तो सातवें आठवें नवे अध्याय में तो आपको प्रश्न ही है ना, ग्यारहवें तो वहां पर तो हमेशा भक्ति का ही वर्णन है पूरा। ग्यारहवें अध्याय में कहां पर भक्ति का वर्णन हुआ है, वहां पर तो विश्व विराट रूप है ना। भक्त्या अनन्या शक्या अहम एवं विदोर्जुना ज्ञातं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप मत्कर्म परमो भव मद्भक्त। सो ऐसे वहां पर भी वर्णन हुआ है। बारहवें अध्याय तो भक्ति योग है, तेरहवें अध्याय में कहां पर हुआ है भक्ति का, तेरहवें अध्याय में उस दिन मैं बोल रहा था ना, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तुम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भाव योपपद्यते। 13वें अध्याय के 19वां श्लोक, 18वां या 19वां श्लोक। सो 14वें अध्याय में कहां पर वर्णन हुआ है भक्ति का, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूहाय कल्पते। क्योंकि तीन गुणों का वर्णन हुआ है, जो मेरे शरण में आते हैं वही इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान 15वें अध्याय में। बहुत सारे 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग अंत होता है ना, अंतिम श्लोक है ना वो, जो मुझे जानते हैं वो मेरे भावपूर्वक भक्ति में लग जाते हैं, ऐसे भगवान जी। तो 16वें अध्याय में कहां पर वर्णन हुआ है? अभयम सत्व संसिद्धि ज्ञान योगो व्यवस्थिति। तो दैवी गुण, दैव और असुर, जो विष्णु भक्त है वो दैव है और जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं है वो असुर है। सो एसेंशियली प्रभुपाद मेन अंतर दैव और असुर के बीच में, जो शास्त्रों को स्वीकार करते नहीं है वो असुर है, जो शास्त्रों को स्वीकार करते हैं तो वो सुर है। प्रभुपाद उसका वर्णन करते हैं कि शास्त्रों को मानने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण को मानना। तो ये एक परिभाषा, नास्तिक का एक परिभाषा है, भगवान कृष्ण को जो नहीं मानते या शास्त्र को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं। जनरली देवी देवता वो मानते हैं शास्त्र को, नहीं तो वो देवी देवता नहीं मान सकते, ठीक है। और 17वें अध्याय में अंत में कैसे होता है? ओम तत्सत इति निर्देशो, सब कुछ परम सत्य को अर्पण किया जाता है वो भी। और 18वें अध्याय में भी मन मना भव मत भक्तो, सभी अध्यायों में, प्राय सभी अध्यायों में भक्ति ही सार है ना? तो ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर 12वें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं। और 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक, नहीं नहीं पहले उसके पहले हम लोग 9वें अध्याय में जाएंगे, 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में जाइए। हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है, क्या है? पर्सनल फॉर्म ऑफ कृष्णा इट इज मेंशन ना, साकार रूप क्या होना चाहिए वो, पर्सनल फॉर्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न था, क्या प्रश्न था ये पहले 12वें अध्याय के पहले श्लोक में कि सगुण और निर्गुण के बारे में प्रश्न है ना। So, 9वें अध्याय के 30वें श्लोक खोलिए। क्या है? अश्रद्धदान पुरुषा धर्म से, आफ्टर रीडिंग भगवदगीता वन शुड प्रॉम्प्टली कम टू द कंक्लूजन ऑफ भगवदगीता, मिल गए? मिल गए 9:3। तीसरा श्लोक, तीसरा है सर, ओके। भगवत प्राप्ति धर्म भूष्य क्या मिल गया वो भगवद गीता? आफ्टर रीडिंग भगवदगीता अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वास हो जाता है तो यही श्रद्धा है। After reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. One should give up all other engagements and adopt service to अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यही सार भक्ति है ना। फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट 13.8-12 वेरी लॉन्ग परपर्ट। It is understood here that Bhagavad Gita is simply expounding the science of devotional service, but very good quote. Bhagavad Gita के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक वो साथ में है, आपको वहां पर नई चानन्य भक्ति रवि विचारिणी हम लोग 13वें अध्याय ये श्लोक ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वें अध्याय में कैसे भक्ति बताया गया, नई चानन्य योगे न भक्ति रव्य विचारे ने। It is understood here that Bhagavad Gita is simply expounding the science of devotional service. मिल गए 425 दूसरा पैराग्राफ के अंत में। Why he keeps the mouth dirty? यह भक्ति की विधि है और यहां है स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इंद्रियाशेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 5-6 श्लोकों में भगवान ज्ञान क्या है वर्णन कर रहे, उसमें से एक अंग है आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम इंद्रिय जो विषय वस्तु है उनसे वैराग्य प्राप्त करना। क्या विषय वस्तु है इंद्रिय के बताइए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। तो ये 5 इंद्रिय विषय है, इंद्रिया हमेशा इनके पीछे पड़े रहते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मतलब इससे वैराग्य प्राप्त करना चाहिए, हम लोग अनासक्ति प्राप्त करना चाहिए। तो वो कैसे होता है, जब हम लोग इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तब ऐसे होता है। हम लोग अपने नेत्रों को भगवान का दर्शन करने में लगाते हैं, अपने नासिका को उनको अर्पण किया हुआ जो गंध है या पुष्प है उसको सूंघने के लिए उपयोग करते हैं, और जो जिह्वा को भगवान के प्रसाद जो है या तुलसी जो अर्पण किया हुआ उसको हम लोग चखने में उपयोग करते हैं। ऐसे उपयोग करने से सभी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से वैराग्य प्राप्त करते हैं। तो यह भक्ति का मार्ग है, यह भक्ति के विधि है और यह यहां यह समझना होगा कि भगवद गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करता करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवद गीता के बुद्धिहीन भाष्याकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों के ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवद गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। है ना, क्लियर? प्रतिपादन करती है, एक्सपाउंडिंग। फिर अभी प्रश्न उठता है, क्यों अन्य विषयों के बारे में भगवान चर्चा करते हैं? भगवद गीता में हम लोगों ने चर्चा किया ना, बहुत सारे विषय है, भक्ति सार है, ठीक है, लेकिन अन्य विषयों के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? ये प्रश्न उठता है ना अभी मन में। कौन बताएंगे इसके उत्तर में, कुछ बोलना चाहेंगे? बोले। कैसे उसको आप एक वाक्य में बताइए। नहीं, हमारा प्रश्न है, प्रश्न समझ में आ गया? क्यों ये वर्णन किया गया? दूसरा चीज भगवद गीता में भक्ति ये सार है, सिर्फ भक्ति को वर्णन करना है होता ना, क्यों ये अन्य विषयों के बारे में वर्णन हुआ है? एक एक वाक्य में बोले आप जो बोल रहे थे। नो, आवर क्वेश्चन इज नॉट विच वन इज गुड, आवर क्वेश्चन इज वाई दैट इज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता। या पहला चीज है भक्ति के महानता को गुणगान करने के लिए, वो अन्य विषयों को इसलिए वर्णन किया गया, एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझने के लिए उसको वर्णन किया गया। तुलनात्मक दृष्टिकोण से कैसे भक्ति श्रेष्ठ है इन सभी चीजों से, ऐसे समझने के लिए उनको वर्णन किया गया। समझ में आ गया, क्लियर? और दूसरा है भक्ति को और गुणगान करने के लिए, वही एक ही बात है, लेकिन हम लोग उसको एक और पॉइंट बना सकते हैं। या वास्तव में कर्म योग ज्ञान योग क्या है? वो मिश्र भक्ति है। कर्म मिश्र भक्ति, कर्म योग का अर्थ है कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान मिश्र भक्ति। तो योग का योग अष्टांग योग का अर्थ है, या ज्ञान योग का अर्थ है योग मिश्र भक्ति। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उसको। वास्तव में कर्म ज्ञान योग का वर्णन नहीं हुआ है, वो कर्म ज्ञान योग मिश्र भक्ति का वर्णन हुआ है, ऐसे लिखे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एक्चुअली ये पहला पॉइंट होना चाहिए, तीसरा पॉइंट। कोई अन्य मार्ग वाले आके ऐसे कुछ उनके बारे में, उनका जो क्रिया है उसके प्रक्रिया है उसके बारे में जोर से आपको प्रचार करेंगे, यही भगवद्गीता में बताया गया, तो आपको भी मालूम होना चाहिए, इसलिए ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। वो भी एक अपने भक्ति में अपने श्रद्धा को बचाने के लिए दूसरे प्रक्रियाओं का थोड़ा थोड़ा बताया गया, ठीक है। ये आंसर हो गया, निष्कर्ष हो गया। फर्स्ट वन इज यू डोंट नो व्हाट इज दैट, भक्ति को गुणगान करने के लिए एक विश्लेषणात्मक। दूसरा है वो दोनों एक ही है पहला, हा? और दूसरा हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? वास्तव में कोई अन्य मार्ग का वहां पर वर्णन नहीं किया गया है, सिर्फ वो कर्म योग ज्ञान योग जिसका वर्णन हुआ है वो कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र और योग मिश्र भक्ति है। बिकॉज योगा मीन्स टू लिंक इट टू द सुप्रीम गॉड एंड भक्ति, ऑल दीज योगा आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे नीड द टच ऑफ भक्ति, देयरफॉर दे आर जस्ट कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र योग मिश्र भक्ति है। ऐसा लिख सकते हैं कि वास्तव में कोई अन्य मार्ग का वर्णन नहीं हुआ है, वो एक ही मार्ग का वर्णन हुआ है लेकिन मिश्र भक्तियों का वर्णन हुआ है। दे आर डिफरेंट, योगा लैडर में ना अलग अलग वो सीढ़ियां हैं, या प्रोग्रेसिव, दे आर प्रोग्रेसिव स्टेप्स टूवर्ड्स भक्ति योगा, दैट इज अमेजिंग। योग के सीढ़ी में अलग अलग स्तर है वो, बस उसको हम लोग और अच्छी विस्तार से चर्चा करेंगे जब योगा लैडर चर्चा करेंगे। सो अन्य विषय भी जो कुछ भी वर्णन हुआ है वो भक्ति के अनुकूल कारक दृष्टिकोण से वर्णन हुआ, भक्ति के लिए अनुकूल कारक दृष्टिकोण से वर्णन हुआ, समझ में आ गया। जैसे कुछ भी हो, आपका मन के बारे में वर्णन हुआ है, मनोविज्ञान के बारे में वर्णन हुआ है, या आयुर्वेद के बारे में वर्णन हुआ है, नियमित जीवन कैसे बिताना चाहिए, युक्ताहार विहारस्य उसका वर्णन हुआ है, ये सभी वर्णन भक्ति को अनुकूल कारक दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है, भक्ति को भक्ति के अनुकूल कारक दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है। तो इसलिए सभी भगवद्गीता का निष्कर्ष है भक्ति। सो लिख लीजिए वो भी चौथा पॉइंट, चौथा या पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट। और कुछ है? आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड लाउडली। भक्ति के अनुकूल दृष्टि अनुकूल कारक दृष्टिकोण से, इट इज प्रॉपर आर नॉट दैट सेंटेंस इज, बट यू हाउ यू कंपोज भक्ति करने, व्हाट इज दैट, भक्ति के लिए अनुकूल कारक दृष्टिकोण से वर्णन किया है। व्हाट हैपेंड, ही राइट्स आर नॉट, वेयर इज ही, जस्ट गो सम हियर, टेंपल कमांडर ही हैज बिकम, हरि बोल, लिख रहा है कि नहीं सभी, क्या नोट्स नोट्स दीजिए, देखेंगे नोट्स भी चेक करेंगे। हाँ ठीक है बैठे, अभी अभी चार पॉइंट लिखा हम लोगों ने, वो लिख लीजिए। एक्चुअली एक नियम है, बीच में उठ के इसके लिए भी नहीं जाना चाहिए क्लास में, वो अपराध है, वो चौथा नाम अपराध है, श्रुति शास्त्र निंदनम है। यस, पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, या वो उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, हाँ कुकिंग के लगे थे, ओके ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो हमें भी प्रसाद नहीं मिलेगा, है हम बोलना भी बंद कर देंगे, है ना, हम आपके ऊपर निर्भर रहेंगे। नहीं, पहले ही जाना चाहिए, पूछने के से डिस्टर्ब हो जाएगा ना तो क्लास के।
Thank you.
गुरुसंघ का दिग्दर्शन था। ठीक है, और कुछ है? अगला लिखा नहीं ना यहाँ पर, अगला हमारा पॉइंट। तो भक्ति कंक्लूजन हो गया। हाँ बोलिए। यही है भक्ति इज द कंक्लूजन। या जब भी दोहराया जाता है उसका महत्व ज्यादा है ना, महत्व को बताने के लिए। और वही हम लोगों ने चर्चा किया अभी, भक्ति भगवद गीता का कैसे निष्कर्ष है। तो अगला है भगवद गीता का फल, भगवद गीता को अध्ययन और पालन करने का फल, भगवद गीता को अध्ययन और पालन करने का फल। तो ये जो विषय हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कितना हुए 17 ना अभी 17, तो 17th सेक्शन टॉपिक रिजल्ट ऑफ स्टडीइंग और फॉलोइंग भगवद गीता। ये जो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो फल है भगवद गीता का फल, दो पहले जो दो विषय हम लोगों ने चर्चा किया था उससे संबंधित है। एक है भगवद गीता का उद्देश्य, भगवद गीता का क्या उद्देश्य है? अंधकार या अज्ञान से मुक्त होना चाहिए। देहात्म बुद्धि से हमें मुक्त करके भगवान के साथ हमारे जो नित्य संबंध है उसको स्थापित करना चाहिए, वो भगवद गीता का उद्देश्य है। फल क्या होना चाहिए? वो अध्ययन करने या पालन करने से हमें वो फल प्राप्त होना चाहिए, है ना? तो इसलिए फल भी वो ही होना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट भी वही होना चाहिए। और दूसरा चीज है, दूसरा विषय हम लोगों ने चर्चा किया, संबंध अभिधेय प्रयोजन, भगवद गीता के सार करके हम लोगों ने चर्चा किया। इसका अर्थ है कि भगवद गीता अध्ययन करने से हमें संबंध ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, भगवान हमारा स्थिति क्या है, भगवान का स्थिति क्या है, भगवान के शक्तियों का ज्ञान, कैसे ये भौतिक जगत भगवान का एक विभिन्न शक्ति है, एक शक्ति है, वो जीवात्मा को कैसे बांधता है उसका ज्ञान होना चाहिए, हमें प्राप्त होना चाहिए। उसका ही नतीजा देहात्म बुद्धि से मुक्ति हो जाता है। और भक्ति को पालन करने से, भगवद गीता का सार क्या है? सार और निष्कर्ष है भक्ति, और फल है उसका फल है प्रेम। इसका अर्थ है हमें वो संबंध ज्ञान को समझने के बाद हमें भक्ति में लग जाना चाहिए, और भक्ति में लगने से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाना चाहिए, वही भगवद गीता का भी फल है। ठीक है, तो किसी को पता है भगवद गीता में अर्जुन ने व्यक्त किया, भगवद गीता सुनने के बाद उनको फल मिला, वो कौन सा श्लोक है? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मया अच्युता गतोऽस्मि स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम धब, ऐसे कहते हैं। उसके पहले के श्लोक में भगवान बोलते हैं, खच्चित एतत् श्रुतम् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा खच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। प्रता हे धनंजय, खचित एतत् श्रुतम् त्वयैकाग्रेण चेतसा, क्या आपने एकाग्रता मन से इसको सुना? ऐसे पूछ रहे, क्या आपके अज्ञान और सम्मोह जो है वो अभी खत्म हो गए? ऐसे प्रश्न पूछ रहे। हम भी आपको पूछेंगे भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद, ऐसे क्या आपने एकाग्रता से सुना? क्या आपको ये फल मिला? ऐसे मिलना चाहिए ना ये फल, है कि नहीं? इसलिए पहले ही बता रहा था कि आप याद रखें या आप एकाग्रता से आप सुने, इसलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। तो उसको तात्पर्य पड़ी है उसको
भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतः जब उनका वर्ण था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरे
वन मिनट बिकॉज दे 1872 72वां श्लोक 18वां अध्याय के 72वां श्लोक में है उसका। मिल गया 72वां श्लोक 72। माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र प्रभु आपके पास भगवद गीता है ना, दोनों एक साथ देख रहे हैं, देखिए हम लोग कुछ बोल रहे हैं ना अभी। 72 वर्ष कहाँ है? वो सेवा में मग्न रहते हैं हमेशा, उनका सेवा का चिंतन रहता है। टेम्पल कमांडर कल रात को बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पर भी भगवान बोलता है थवे का ग्रे न चेतसा, एकाग्रता के मन से आप सुनिए, ऐसे तो हम भी आपसे विनंती कर रहे हैं। बोले पढ़िए
भगवान,
मे बी ही कैन रीड, हिज वॉइस इज ऑल्सो स्ट्रांग। पढ़िए उसको, उसके तात्पर्य पढ़िए। देखिए वो एक जिम्मेदारी होता है गुरु का कि क्या शिष्य एकाग्रता से सुन रहे कि नहीं, वो देखने के लिए क्या वो समझ लिए कि नहीं। ऐसे कभी कभी हम लोग पूछते हैं ना, कोई शंका है, प्रश्न है, शंका नहीं है तो इसका अर्थ क्या है? सब कुछ समझ लिया या कुछ भी समझ नहीं, दोनों हो सकते हैं, इसलिए पूछना पड़ता है। और ऐसे पूछ के भगवान क्या मतलब प्रॉपर उसका अर्थ क्या दे रहे हैं? भगवान फिर से भगवद गीता आरंभ से बोलने के लिए भी तैयार थे क्योंकि गुरु मतलब उनके शिष्यों का हित चाहते हैं, तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर से दोहराने के लिए तैयार रहते हैं, है ना? ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे। हम आपके गुरु तो नहीं है लेकिन ये सेवा दिया गया है, ठीक है, पढ़िए उसको। और एक्चुअली ये फल है, उसका अज्ञान दूर हो जाता है, उसका लक्ष्य वही है ना भगवद्गीता का। मैं बता रहा था ना क्या संबंध है भगवद्गीता के उद्देश्य से और भगवद्गीता के फल से, संबंध यहाँ पर देखिए। इग्नोरेंस इज डिस्पेल्ड। और पढ़िए तो ये फल है भगवद्गीता। ठीक है, और अगला श्लोक कौन पढ़ेंगे? अभी पढ़िए, अभी पढ़िए। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। तो यहाँ पर चार फल बता रहे हैं अर्जुन, क्या मुझे मिला, क्या हुआ भगवद्गीता सुनने के बाद। पहला क्या है? नष्ट मोह, मेरा जो मोह है वही अज्ञान है। मोह क्या था अर्जुन का? उनके सगे संबंधी उनके प्रति उनको स्नेह हो गया, स्नेह से आवृत्त हो गए। तम तथा कृपयाविष्टम, तो आवत मंडेन कंपैशन, तो भौतिक दया से वो आवृत हो गए, वही मोह, मोह के कारण है ना। जो धृतराष्ट्र कभी मुक्त नहीं हुए, अंत में मुक्त हुए धृतराष्ट्र, जब विदुर ने शिक्षा दिया अंत में। तो वो नाश हो जाता है स्मृति लब्ध्वा। स्मृति मतलब क्या स्मृति है? या कृष्ण के साथ जो संबंध है, मैं आपका सेवा करना ही मेरा स्थिति है, मूल स्थिति है, उसका स्मृति उनको वापस आ गया। जब हम लोग मोह से ग्रस्त हो जाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा संबंध क्या है भगवान कृष्ण के साथ, तो वो स्मृति लब्ध्वा। और स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे अंदर अभी कोई संदेह नहीं है, संदेह पूर्ण, सभी संदेहों से मुक्त हो गए अर्जुन। अनकरिष्ये वचनम तवा, फिर अपने आप वक्त क्या करता है तो भगवान की सेवा में लग जाता है। तो अंत में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि भगवान का ये मिशन था कि पृथ्वी के ऊपर जो भार बढ़ गया था ये असुर राजाओं के कारण, तो उसको कम करना। अभी अर्जुन करिष्ये वचनम तव, इसका अर्थ क्या है कि वो भगवान के आदेश अनुसार उनके मिशन में काम करने के लिए वह तैयार हो गए। तो हम लोग भी परंपरा में श्रील भगवद गीता को अध्ययन करने के बाद हमारे मोह कम करना चाहिए, भौतिक जगत के प्रति जो आकर्षण है, मोह है, या भौतिक देह के प्रति है, देह से जो संबंधित है, वैसे व्यक्तियों के प्रति या वस्तुओं के प्रति हमें कम हो जाना चाहिए और समझना चाहिए भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध है और इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और परंपरा में जो आचार्यों ने भगवान कृष्ण के जो मिशन है उसमें हमें कार्य करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। करिष्ये वचनं तव, ऐसे तो ये फल है भगवद्गीता का, ऐसे होना चाहिए, इसलिए ये सिखाया जा रहा है, इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं ताकि और हम लोग इस मिशन में कार्य करने के लिए सुदृढ़ हो जाए। तो ये फल है, ठीक है, ये चार फल नोट करेंगे भगवद्गीता को अध्ययन करने से या पालन करने से, मोह से मुक्त होना, भगवान को स्मृति प्राप्त करना, भगवान की स्मृति को प्राप्त करना, और तीसरा है सभी संदेहों से मुक्त होना, चौथा भगवान के मिशन में क्रियाशील होना। भगवान के मिशन में क्रियाशील होना।
Now I will take time for I can do that. Thank you.
ओके सो 18वें अध्याय के 72वां और 73वां श्लोक तो भगवद गीता के फल को वर्णन करते हैं और कुछ और उल्लेख है आप नोट कर लीजिए और बाद में उसको पढ़ लीजिए। भगवद गीता के 4वें अध्याय के 41वां और 42वां श्लोक श्लोक में भी भगवद गीता का जो फल है उसको वर्णन किया गया है, आप ढूंढ लीजिए, बाद में मैं पूछता हूँ, आपको पढ़ना चाहिए वहां से, हा? आप उसको दो होमवर्क ग्रह कार्य। भगवद गीता के 4वें अध्याय का 41वां और 42वां श्लोक आप नोट कर लीजिए, बाद में देखिए उसको, हाँ, भगवद गीता के फल कहां से कहां तक वर्णन हुआ है आपको तात्पर्य में हमें बताना चाहिए, श्लोक और तात्पर्य दोनों, ठीक है। 441, 42 41 और 42 और 10वें अध्याय के 11वें श्लोक के तात्पर्य में, बाय स्टडिंग भगवद गीता वन कैन बिकम अ सोल कंप्लीटली सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड एंगेज हिमसेल्फ इन प्योर डिवोशन, वो एक्स्ट्रा है क्योंकि इस 78वें अध्याय के 73वें श्लोक में वो चार जो फल है वो बता दिया गया, तो वो जो मैं बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा कोर्स फल है, वही पॉइंट वो उल्लेख करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग भगवद्गीता के 9 अध्ययन के 9 स्तर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भगवद्गीता अध्ययन के 9 स्तर लिख लीजिए, 18th पॉइंट ना, 18th टॉपिक, 9 स्टेजेस ऑफ भगवद्गीता स्टडी। भगवद्गीता अध्ययन के 9 स्तर, भगवद्गीता अध्ययन के 9 स्तर कौन कौन से हैं, 9 स्तर बताएंगे भगवद्गीता अध्ययन के, क्यों ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं 9 स्तर, जरूरी नहीं कि जो भी अध्ययन करते हैं और पालन करते हैं भगवद गीता को सभी को एक ही फल मिलता है, क्यों सभी को एक ही फल नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग अलग अलग स्तर पर हैं। जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं, भक्ति को वो विश्लेषण करने के बाद, वर्णन करने के बाद, भक्ति के 64 अंगों को वर्णन करने के बाद और भक्ति के फल को वर्णन करने के बाद, ये साधना भक्ति का फल क्या है, वो भाव और प्रेम को जागृत करना, वही फल है। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि सभी को एक ही फल नहीं मिलता है, आप जानते हैं ना, हम लोग भी हरे कृष्ण कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, लेकिन जो चार कुमार थे सिर्फ एक बार उन्होंने वो भगवान को अर्पित किया हुआ तुलसी दल का जो सुगंध है सूंघ लिया, तुरंत ही भक्त बन गए। और बिल्वा मंगल ठाकुर भी आप जानते हैं ना, वो वेश्या के पास गए वो, और वो ऐशा ने एक बात बता दिया, तुरंत ही वो महान भक्त बन गए। और बाद में वो इतना भक्ति किया, उन्होंने ऐसे ग्रंथ रचना किया कृष्ण कर्णामृत नामक, चैतन्य महाप्रभु उसको आनंद लेते थे सुनने में। सो रस शास्त्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने रचना किया कृष्ण कर्णामृत नामक। फिर हमें ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, सालों से हम लोग नाम जप कर रहे हैं, सालों से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सालों से भक्तों का संग कर रहे हैं, दीक्षा भी लिया, सब कुछ हुआ, क्यों हमें ऐसे फल नहीं मिलता है, ऐसे ना प्रश्न उठ सकता है ना। हम लोगों ने भी बहुत, आप में से कई भक्तों ने पढ़ा होगा भगवद गीता पहले, कितने लोग पढ़े हैं भगवद गीता पूरा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भक्तों ने पढ़ा है, आप भी पढ़े हैं ना, जो नहीं पढ़े तो हम लोगों को ऐसा क्यों फल नहीं मिला जैसे अर्जुन को फल मिला, नष्ट मोह स्मृति लग जो अर्थात प्रसाद। शायद आपको फल मिला होगा, मुझे तो नहीं मिला। कितने मैं 15 साल से पढ़ते ही जा रहा हूँ, पढ़ते ही जा रहा हूँ। 15 साल से 15 बार पढ़ चुका हूँ शायद। तो फिर भी ये फल नहीं, नष्ट मोह स्मृति लब अर्थात प्रसाद स्थितोस्मी गत संदेह खरीष्य वचन दवा, क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हम लोग भक्ति क्या है, अलग अलग स्तर है और हम लोग अलग अलग स्तर में रहते हैं। तो वैसे ही भगवद गीता का भी अलग अलग स्तर है। भक्ति के नाव कौन कौन से स्तर है बताएंगे कोई? बोले नाव सर। पहले रुचि आता है फिर आसक्ति आता है। तो ये नव स्तर है। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक को खोले, तात्पर्य खोले। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य को खोले। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य वहां पर श्रील प्रभुपाद या रूप गोस्वामी के श्लोक को उल्लेख करते हैं, जहां पर रूप गोस्वामी नव स्तरों को वर्णन कर रहे। मिल गए सबको। आदो श्रद्धा तथा साधु संगोता भजन क्रिया ततो नर्त निवृत्ति स्या ततो निष्ठा रुचिस्तता अताशक्तिस्ततो भावस्तता प्रेमाभ्युदांचति साधकानां मयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। पढ़िए माधवेंद्र प्रभु। So, प्रारंभ में इच्छा होना चाहिए। वो इच्छा क्या है? श्रद्धा। आदो श्रद्धा, आरंभ में श्रद्धा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, भक्ति करने का इच्छा होना चाहिए, भक्ति करने के लिए रुचि होना चाहिए, भक्ति करने के लिए आकर्षण होना चाहिए, उसको ही श्रद्धा कहते हैं। बोले सो फिर साधु संघ। साधु संघ में दो स्तर होते हैं, एक सामान्य साधु संघ भक्तों के संघ में आना, दूसरा आध्यात्मिक गुरु से दीक्षित होना। तो ये दो दो स्तर है साधु संघ में। और तो भक्ति योग का प्रारंभ करना मतलब भजन क्रिया है। आदो श्रद्धा तथा साधु संघ भजन क्रिया। फिर तो आसक्त भौतिक समस्त आसक्ति से मुक्त होने का मतलब है अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया करने से, गुरु के मार्गदर्शन में भजन क्रिया करने से सभी अनर्थों से मुक्त हो जाता है, उसको अनर्थ निवृत्ति स्तर कहते हैं। चौथा स्तर आएगा। फिर स्थिरता मतलब निष्ठा। तो रुचि टेस्ट आ जाता है, तब आपको किसी को बाध्य करना नहीं पड़ता है, उठो जल्दी ये करो वो न करो, नहीं, उसको स्वयं रुचि आ जाता है। जब रुचि परिपक्व हो जाता है तो उसको आसक्ति कहते हैं, अटैचमेंट, तब वो अपने आप सब कुछ करते रहे, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, तब उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। या प्रथम सोपान मतलब फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ लव मींस वो भाव भक्ति। भाव भक्ति इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ प्रेम भक्ति, इट इज आल्सो लव ऑफ गॉड, वो भी भगवान का प्रेम ही है, लेकिन उसका पहला स्तर है, पहला कदम है प्रिलिमिनरी स्टेज। तो फिर प्रेम प्राप्त हो जाता है। और पढ़िए स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, धीरे 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 होता है ये। ऐसा नहीं कि आज आ गए भक्ति में, मुझे भगवान क्यों दर्शन नहीं दे रहे प्रभु जी, इतना मैं जपा किया, ऐसा नहीं बोल सकते। स्लो प्रोसेस, मंद, क्या बोलते हैं हिंदी में, मंद विधि, इसको मंद, I think it should have been different word, no? Right or not? Manda matlab it is dull, no? Right or not? Manda, sumanda, it is a negative word, it is actually. Yeah, dhimi vidhi se, dhimi vidhi, no? Krama word is used in Sanskrit, Sanskrit bhasha mein krama shabd used kiya hai, lekin usko धीमी गति का जो विधि है लेकर धीमी विधि को विधि के द्वारा स्लो प्रोसेस, लेकिन आचार्य समझाते हैं धीमी मतलब एक एक जीवन उतना धीमी नहीं है, एक जीवन में हम लोग परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अनादि काल से हम लोग भौतिक जगत में है, उसमें एक जीवन हम लोग भक्ति करेंगे तो परिपूर्णता प्राप्त करेंगे तो क्या वो धीमी हो गया? नहीं, फिर भी वो धीमी है, हमें समझना चाहिए। तो हमारे अनुसार ऐसा नहीं कि एक ही रात में ओवरनाइट हम लोग साधु बन जाएंगे या भगवान का भक्त बन जाएंगे, धीरे 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 होगा। तो उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो स्तोव्रति शब्दी भक्ति, ये भक्ति के नौ स्तर है। तो प्रेम भक्ति मतलब भगवान के धाम में जाना, भगवान के सामने चले जाएंगे, भगवान हमें प्रकट हो जाएंगे, वो प्रेम भक्ति है, तब तक होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भक्ति के नौ स्तर है, कौन बताएंगे अभी भक्ति के नौ स्तर को? कोई बताएंगे? एक एक अब बोले नौ स्तर का। लिखना चाहिए ना, लिखना चाहिए, अभी नहीं लिखेंगे तो याद नहीं रहेगा, है ना। तो अभी एक काम कीजिए, आप दो टेबल बनाए, एक टेबल बनाइए दो, उसमें क्या कीजिए भाग कीजिए। तो एक भाग, एक कॉलम में भक्ति के नौ स्तर और दूसरा कॉलम में भगवद गीता अध्ययन के नौ स्तर लिखिए, ठीक है। और एक और भी कर सकते हैं, एक डायग्राम भी लिख सकते हैं, ऐसा एक सीडिंग बनाई है, नौ स्टेप्स बनाई है उसमें, है ना। वो भी दोनों, ये होमवर्क है आपके लिए, ये करना है। तो कौन बोलेंगे नौ स्तर, भक्ति के नौ स्तर कौन बोलेंगे क्विकली? कोई हाथ ऊपर उठा, ये कोई कौन बोलेंगे भक्ति के नौ स्तर? और कौन बोलेंगे हाथ रुपये उठाइए? माधवेंद्र को बोलिए नौ स्तर भक्ति के, जल्दी जल्दी। भजन क्रिया, भजन लिख रहे हैं सभी लोग, और निष्ठा, निष्ठा निष्ठा, और उसके बाद में रुचि। आसक्ति, भाव और प्रेम, श्रद्धा, साधु संग, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, छठा, छठा क्या है बताइए, रुचि, सातवा आसक्ति, आठवा भाव और नौवा प्रेम। तो अभी जैसे मैंने बताया, क्योंकि भक्ति के हम लोग अलग अलग स्तर पर रहते हैं, इसके कारण सबके लिए एक ही फल नहीं मिलता है। हमारे स्थिति के अनुसार, हमारे स्तर के अनुसार हमें अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। तो इन हर एक स्तर को अलग 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 फल होता है। तो अंतिम फल क्या है? प्रेम है। वैसे ही भगवद गीता अध्ययन का भी अलग अलग फल होता है। आप में से कई सारे अभी अध्ययन करेंगे भगवद गीता, जरूरी नहीं कि आपको सभी को एक ही फल मिलेगा, आपके स्तर के अनुसार वो आपको फल मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग भगवद गीता के नौ स्तरों को देखेंगे। तो आठवें अध्याय के पहले भगवत गीता में रुचि, रुचि मतलब रुचि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अध्ययन करने की इच्छा को श्रद्धा कहते हैं, या उसके आदेशों को पालन करने की इच्छा जो है उसको श्रद्धा कहते हैं। वास्तव में आप भक्ति रसामृत सिंधु में देखेंगे तो श्रद्धा का परिभाषा ही रूप गोस्वामी कहते हैं, गीता और भागवत जैसे शास्त्रों को पालन करने की इच्छा या उसको सुनने श्रवण करने की इच्छा, उसको श्रद्धा कहते हैं रूप गोस्वामी, क्योंकि वहां से ही हमें भगवान को सेवा करने का या भक्ति करने का श्रद्धा जागृत हो जाता है, इच्छा जागृत हो जाता है। हाँ, गुरु उस दिन मैं चर्चा वो बता रहा था ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, वो भक्ति लता बीज क्या है, वो श्रद्धा है, वो भक्ति को पालन करने के लिए रुचि है, आसक्ति है, इच्छा है, तो आकर्षण है। ऐसा नहीं हम लोग रुचि और उसके बारे में बता रहे, इनिशियल आकर्षण ना, आरंभिक जो आकर्षण है वो कैसे आता है, गुरु और कृष्ण की कृपा से आता है। क्या करते हैं गुरु, एक बीज डालते हैं हमारे हृदय में, गुरु क्या करते हैं, वो गीता भागवत से उपदेश देते हैं, गीता भागवत से उपदेश देने के कारण हमारे अंदर वो इच्छा जागृत हो जाता है, आकर्षण जागृत, उसका अर्थ है भक्ति लता बीज। तो इसलिए श्रद्धा का अर्थ ही वो रूप गोस्वामी कहते हैं, गीता और भागवत सुनने श्रवण करने के लिए इच्छा या आकर्षण। तो इसलिए भगवद गीता का पहला स्तर क्या है, श्रद्धा का अर्थ है भगवद गीता अध्ययन करने का या श्रवण करने की इच्छा, उसको वो पहला स्तर है। और दूसरा स्तर क्या है, आप भक्तों के संग में आएंगे जो भगवद गीता को अध्ययन कर रहे हैं, भक्तों के संग में भगवद गीता को अध्ययन करना तो वो दूसरा स्तर है, या श्रवण करना भक्तों के संग में आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, मुख के द्वारा गीता का श्रवण करना वो दूसरा स्तर है। दूसरा और तीसरा, भक्तों के संग में आना और अध्ययन करना, तीसरा समझ में आएगा। और चौथा है हम लोग भौतिक मोह से मुक्त हो जाएंगे, गीता श्रवण करने से भौतिक मोह से मुक्त हो जाएंगे, आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे। कई सारे आसक्तियां होंगे, कोई कोई मांस व मांस भक्षण करने का आसक्ति रहता है, किसी को स्त्री संग करने का आसक्ति रहता है, किसी को जुआ खेलने का आसक्ति रहता है, किसी को मदिरा पान करने में आसक्ति रहता है। ऐसे चौथा अनर्थ निवृत्ति, थर्ड इज अध्ययन करना, सेकेंड इज कमिंग इन द एसोसिएशन ऑफ दोज पीपल हु आर स्टडिंग भगवद गीता, ठीक है, और ठीक है चौथा हो गया ना। सो फिर सी, दूसरा उन भक्तों के संग में आना जो भगवद गीता का श्रवण और अध्ययन कर रहे, तीसरा है हम भी अध्ययन और श्रवण करना आरंभ करते हैं, भजन क्रिया है ना, और चौथा है उसके कारण अध्ययन भगवद गीता, गीता श्रवण करने के कारण हमारे भौतिक आसक्तियां छूट जाएंगे, समस्त आसक्तियां छूट जाएंगे, ठीक है। और चौथा हम लोग अध्ययन गीता अध्ययन करने में स्थिर हो जाते हैं या गीता श्रवण करने में स्थिर हो जाते हैं। पहले क्या होता है, कभी हमें वो पढ़ने की इच्छा होता है, कभी इच्छा नहीं होता है, हम उसको दूर कर देते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं करके, है ना। तो लेकिन ये पांचवें स्तर में, पांचवें स्तर में क्या हो जाता है, गीता श्रवण और अध्ययन करने में हम स्थिरता प्राप्त करते हैं, ठीक है, लिख दिए, श्रवण और अध्ययन में स्थिरता प्राप्त करना, समझ में आ गया उसका, है ना, ऐसा होता है ना हमारे साथ, हम लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है रहने दो कुछ और करूंगा मैं, क्या करें। गुरुदास प्रभु को आपको जोर देना पड़ता, पढ़ो 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 करके, हाँ अध्ययन करो, कर रहे कि नहीं, जोर दे। तो फिर वही निष्ठा हो गया, स्थिरता। और उसके बाद में अध्ययन और श्रवण करने के लिए रुचि जागृत हो जाती है। गीता अध्ययन के लिए रुचि या श्रवण के लिए रुचि, गीता श्रवण या अध्ययन के लिए रुचि, या ठीक है वो भी स्टडी, यू नो स्टडी या फॉलोइंग। स्टडी मीन्स इन संस्कृत इट इज फॉलोइंग ऑल्सो, श्रवण स्टडी मीन्स देर आर डिफरेंट लेवल्स, श्रवण मनन निधिध्यासन, निधिध्यासन मीन्स इंप्लीमेंटिंग दैट इन अवर लाइफ। पहले श्रवण करते हैं, इसके ऊपर मनन करते हैं, फिर उसको अपने जीवन में उतारते हैं। ये स्टडी शास्त्रिक स्टडी मीन्स लाइक दिस, नॉट दिस मॉडर्न स्टडी मीन्स थियोरेटिकल नॉनसेंस। ऐसे एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में भगवद्गीता, बड़े बड़े बात करना, उसके ऊपर कुछ नहीं पालन करना, ऐसे नहीं चलेगा। अध्ययन मतलब श्रवण या अध्ययन मतलब उसको पालन भी करना। तो अध्ययन के लिए रुचि जागृत हो जाता है, तो वो रुचि छठा स्तर ना। सातवा स्तर, हम लोग आसक्ति, गीता अध्ययन के लिए श्रवण के लिए आसक्ति जागृत हो जाए, उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते, ऐसे हो जाता है। ब्रह्मचारी को ऐसे होना चाहिए, उसको पढ़ाई किए बिना आसक्त उसको रहा नहीं जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं ना, जैसे जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति जो भगवान भक्त होते हैं, वो जैसे एक युवक युवती के संग में आनंद लेता है, वैसे वो गीता और भागवत को श्रवण करने में आनंद लेते हैं, तो वो ऐसे होना चाहिए, उसको रहा नहीं जाना चाहिए, तभी ब्रह्मचारी लोग गीता और भागवत से विवाह करना चाहिए। समझ में आ गया? वो दसवें अध्याय के नवे श्लोक के तात्पर्य में ऐसे प्रभाव लेते हैं, युति के संग में जैसे आनंद लेते हैं, वैसे महान भक्त लोग गीता और भगवद्गीता श्रवण करने में आनंद लेते हैं, तो ऐसे होना चाहिए हम लोग। नहीं तो आप स्त्री को, एक स्त्री को ढूंढना पड़ेगा, है ना, नवे श्लोक के, नवे श्लोक के तात्पर्य में। तो ये अच्छा है, ये गीता भागवत पढ़े, राइट, सही कि नहीं? तो फिर उसके बाद में आसक्ति के बाद में, तो गीता देखने से ही आपको क्या होगा, या श्रवण करने से ही सभी भाव भक्ति प्रकट हो जाएगा। उसके लिए उदाहरण कौन है राय? उसके लिए कोई उदाहरण है इतिहास में? हाँ, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, या और कोई बोल रहे थे इसके लिए कोई उदाहरण है? वही बताया उन्होंने, एक और उदाहरण कौन बताएंगे? गीता को श्रवण करने से भाव भक्ति प्रकट होगा, कोई और उदाहरण? पहला उदाहरण इन्होंने बता रहे थे, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, वो रंग क्षेत्र में, श्रीरंग, श्रीरंग में गए, वहां पर एक ब्राह्मण बैठे थे, ब्राह्मण उनको पढ़ाई उतना सुशिक्षित नहीं थे, उसको पढ़ने के लिए नहीं आता था, लेकिन उनको गुरु ने उनको आदेश दे दिया कि आप हर रोज 18 अध्याय पढ़ना चाहिए भगवद्गीता को। तो फिर वो भगवद्गीता लेते थे, उनको पढ़ने के लिए नहीं होता था, कोशिश करते थे, लेकिन वो भगवद्गीता स्मरण करते ही उनको क्या होता था, वो भगवान का उस चित्र उनके सामने प्रकट होता था। भगवद्गीता के पहले अध्याय में वर्णन हुआ है ना, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युता, अच्युत भगवान जो परम भगवान है, देवोत्तम पुरुष है, वो उनके भक्त के सारथी बने हैं, तो वो पार्थ सारथी के जो चित्र देखकर उनको इतना आनंद होता था, उनके नेत्रों से अश्रु बहते थे, ये सब लक्षण प्रकट हुए। दूसरे लोग ये देखकर हंसते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को आश्चर्य हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपने गीता पढ़ने का जो वो फल है प्राप्त किया है, वो किसके लिए हुआ? वो एक एक सरल सा, एक गुरु के सरल सा एक आदेश को पालन करने की इच्छा से उनको वो स्थिति प्राप्त हो गया। लेकिन वो इसके लिए भी उदाहरण है, गीता को या श्रवण करने या पढ़ने का जो फल है। दूसरा उदाहरण उसके लिए क्या है, आप 18वें अध्याय खोलिए, वहां पर संजय क्या बोलते हैं देखिए। वो संजय यू नो, इसको सुनने के बाद जब कृष्ण अर्जुन के द्वारा ये जो वार्तालाप हुआ उसको सुनने के बाद संजय कहते हैं, इति संस्कृत्य संस्कृत्य समधार्य, क्या बोल रहे संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य चवथर्व श्लोक भारतस्य महात्मनः संवादम इवम अश्रौसम अद्भुतम रोमहर्षणम, क्या बोल रहे हैं, ये अद्भुत संवाद को सुनकर मेरा रोंगटे खड़े हो रहे। ये भाव भक्ति का एक लक्षण है। संजय को भी वही फल प्राप्त हुआ। व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद् गुह्यम अहम् परम योगम योगेश्वर कृष्णा साक्षात कथयताम स्वयं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुन यो पुण्यम रश्यामी च मुहुर्मुहु। वो क्या कहते हैं, ओ राजन, ये राजन पढ़िए उसको तात्पर्य को, 76वां श्लोक के तात्पर्य को,
भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है उसके पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में जब कोई गीता को सही शोर से
अर्थात नहीं 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 उसके अनुवाद पढ़िए बोलो मैं, ओ किंग हे राजन, और या गीता का फल भी यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। ये भी एक उल्लेख है, वो लिख लीजिए, और इन श्लोकों को मैं बाद में वर्णन करने वाला। तो संजय भगवद गीता का गुणगान कर रहे हैं, ग्लोरीज ऑफ भगवद गीता, वो हमारा एक और टॉपिक होगा ये आगे, तो वहाँ पर फिर से इनको चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण तौर पर ले रहे हैं कैसे भगवद गीता सुनने के बाद एक व्यक्ति को भाव भक्ति होता है। तो अंतिम जो है भगवद गीता से प्रेमा भक्ति भी प्राप्त होता है। अभी इसके लिए कहाँ ये वर्णन किए करते हैं प्रभुपाद, ये 9 स्तरों को भगवद गीता के, किसी को पता है 9 स्टेजेस ऑफ भगवद गीता स्टडी, भगवद गीता के अध्ययन के 9 स्तर कहाँ पर वर्णन करते हैं प्रभुपाद, किसी को पता है? कई सारे लोगों ने भगवद गीता अध्ययन किया है ना। सो 8वें अध्याय के 28वें श्लोक के तात्पर्य खोलिए, माधवेंद्र प्रभु खोल ले तो उसको पढ़िए, तात्पर्य के अंतिम पैराग्राफ पढ़िए। जोर से पढ़िए, नहीं नहीं उसके अगला पैराग्राफ, वन हु हैज लिटिल फेथ इन भगवद गीता, अंतिम पैराग्राफ। हाँ वो क्या लिखा है, तनिक भी
श्रद्धा नहीं है।
हाँ गलत है वो, वन हु हैज लिटिल फेथ इन भगवद गीता शुड लर्न भगवद गीता फ्रॉम अ डिवोटी, ठीक तरह से पढ़िए। मिस्टेक है वो, नोट कर दीजिए उसको भी एक। वन हु हैज लिटिल फेथ, थोड़ा बहुत श्रद्धा है उसको एक भक्त के, शुड लर्न भगवद गीता फ्रॉम ए डिवोटी। हम लोग इसी यहाँ पर भी भक्त के मार्गदर्शन में भगवद गीता अध्ययन करने से हम लोग अच्छी तरह से ये समझ सकते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने पढ़ा था ना भगवद गीता, लेकिन ये 9 स्तर वगैरह पढ़े नहीं थे, पढ़े थे लेकिन फिर भी पढ़े नहीं थे है ना, तो पढ़िए उसको। या तो भक्तों के मार्गदर्शन में गीता को पढ़ा, हम लोगों ने इसको विस्तार से चर्चा किया कैसे भगवद गीता समझना चाहिए या पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। या और पढ़िए,
तो मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत
ये श्रद्धा है, श्रद्धा साधु संग दोनों यहाँ पर वर्णन किया गया है। भजन क्रिया बिगिन स्टडी, मतलब उसको भजन क्रिया कहते हैं। तीसरा तो ब्रह्म मतलब अनर्थ निवृत्ति है ना, है ना। सो चौथा स्तर तो निष्ठा, अध्ययन में स्थिर होना, स्थिर होना, कभी करना कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना ऐसा नहीं होता है, स्थिर हो जाते हैं। फिर तो रस आना शुरू कर देता है, अटेंड्स द स्टेट ऑफ फीलिंग, नहीं नहीं ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस, उसको आसक्ति कहते हैं। ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस मतलब आसक्ति है, ठीक है। और तो ये भाव और प्रेम है दोनों, क्योंकि दोनों में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन वो इनिशियल स्टेज। तो भगवद गीता पढ़ने से अंत में क्या है, हम लोग भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, प्रेम प्राप्त करेंगे और अंत में भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये भगवद गीता के नौ स्तर है। तो आप कौन से स्तर पर है बताए? सो ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग ये पहले के तीन चार स्तर पर रहते हैं, संशय से मुक्त हो रहे हैं हम लोग धीरे 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 धीरे। तो इसलिए हमें और उसको जागृत, इच्छा जागृत करना है और स्थिरता प्राप्त करना है अध्ययन करने में। तो ऐसे तो इसका अर्थ यह होता है, जैसे भक्ति के नौ स्तर है, भगवद्गीता का भी नौ स्तर है, ऐसे ही जो भी भक्ति के अंग है उसका नौ स्तर होता है। एक अंग है भगवान के सामने नमस्कार करना, उसका भी नौ स्तर होता है। तो कभी हम लोग करना नहीं चाहते हैं, आधा करते हैं, फिर उस लोग करने के लिए स्थिर हो जाते हैं, दंडवत किए बिना नहीं रहा जाता है, वो रुचि है आसक्ति है ना, है ना, ठीक है। जैसे माधवेंद्र प्रभु है वो सब वो तो अभी आठवें नवें स्तर पर है। अनर्थ निवृत्ति जो स्तर है ना, चौथा स्तर है ना, तो उससे हम लोग गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते गिरते हैं, उसके बाद थोड़ा स्टेडी हो जाता है, उसके बाद में गिरने का चांसेस बहुत ही कम है, विरला रेयरली। जो भरत महाराज वो आठवें स्तर पर थे, भाव के स्तर पर थे, वहां से गिर गए, क्योंकि उन्होंने भक्तों के प्रति अपराध किया था, इसके कारण ऐसे हो गया। जनरली जो भक्तों के प्रति जो अपराध करते हैं वो जो अनर्थ, उसके अलग अलग कारणों से हमारे हृदय में अनर्थ जागृत हो जाते हैं। तो एक कारण है, चार कारण है अनर्थों का जागृत होने के लिए। एक है पाप करने से, पापोक्त कहते हैं उसको। दूसरा है पुण्योक्त, पुण्य करने से भी अनर्थ जागृत हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य करने से हमें अच्छा फल प्राप्त होता है, उसको भोगने की प्रवृत्ति आ जाती है हमारे अंदर, तो पुण्य करने से भी अनर्थ जागृत हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ व्हाटएवर। और तीसरा है भक्ति योक्त, भक्ति करने से भी ये अनर्थ जागृत हो जाते हैं। कैसे है? हम लोग ठीक तरह से भक्ति नहीं करते हैं तो ऐसे हो जाता है, जब मिश्र भक्ति करते हैं या अपराध युक्त भक्ति करते हैं सेवा या नाम जप करना, प्रारयुक्त, तब भी हमें भौतिक फल मिलता है, आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। फिर भौतिक फल मिलता है तो उसको हम लोग भोगने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, है ना। सब लोग प्रभु जी बोलेंगे, मान सम्मान देंगे, बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा, भगवान का प्रेम और सेवा नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक फल नहीं मिलेगा, ये भौतिक फल मिलेगा। तो इसलिए ये सब अपराध युक्त भक्ति करना, उससे मुक्त होना चाहिए। तो उससे भी अपराध युक्त भक्ति या अपरिपूर्ण भक्ति करने से भी हमारे अंदर ये अनर्थ जागृत हो जाते हैं। और चौथा कारण है अपराध करने से अनर्थ जागृत। अपराध मतलब नाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध या अन्य जीवों के प्रति अपराध, ये सब अपराध करने से भी हमारे अंदर अनर्थ जागृत। विशेष करके जो आप वैष्णव अपराध करते हैं तो वो अनर्थ बहुत लंबे समय तक वैसे ही रहते हैं। तो ये पहले जो तीन अपराध के स्तोत्र है जिनसे अपराध आते हैं, अनर्थ के स्तोत्र है, वो अनर्थ सभी अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर खत्म हो जाते हैं। थोड़ा बहुत रह जाते हैं, धीरे 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 वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो भक्तों के प्रति अपराध किए हुए जो अनर्थ है वो भाव के स्तर पर भी रहते हैं। तो ऐसे हमारे आचार्य वर्णन किए। तो इसलिए वो भरत महाराज का खत्म हुआ, ऐसे आचार्य ने वर्णन किया है। पिछले जब जन्म में उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे ठीक है। ठीक है, किसका रेफरेंस? ये चार स्तोत्र, भक्ति के चार स्तोत्र, शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कदमिनी ने वर्णन किया, नहीं शायद भक्ति विनोद ठाकुर ने वर्णन किया, उनके शिक्षाष्टक टीका है ना उसमें। वो नया भाव के स्तर पर रहते हैं। और मैंने एक लेक्चर में सुना था, जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में वो वर्णन करते हैं कि कैसे पूर्व में वो भरत महाराज ने कोई भक्त के प्रति अपराध किया था, इसके कारण वो अनर्थ रहा, उससे वो आसक्ति जागृत हो गई हरण से। सोर्सेस ऑफ अनर्थ आज देयर अपराधा जीवन टार सोर्सेस ऑफ अनर्थ, सोर्सेस ऑफ अनर्थ। संस्कृत में उनको पापोक्त कहते हैं, दैट दोज विच आर कॉज्ड बाय सिंफुल एक्टिविटीज, पापों से जो आते हैं अनर्थ आते हैं। दूसरा है पुण्योक्त, जो पुण्य करने से जो अपराध आते हैं, दोज विच आर कॉज्ड बाय पुण्य पायस एक्टिविटीज। थर्ड वन इज भक्ति योक्त, भक्ति से जो आते हैं, अपरिपूर्ण भक्ति से जो आते हैं, ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि भक्ति से अनर्थ निवृत्ति होता है। अपरिपूर्ण भक्ति से जो अनर्थ आते हैं, सो देन चौथा है अपराधोक्त, जो अपराध से आते हैं। बहुत जगह पर इसका वर्णन आता है, भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ग्रंथ में, रूप गोस्वामी शायद नहीं कोई अन्य ग्रंथ में वर्णन। नहीं, अपरिपूर्ण मतलब हम लोग ठीक तरह से पालन नहीं करते उसको। अपराध विशेष करके अलग है, अपराध इज समथिंग यू आर ड्यू टू यूर फॉलन नेचर, यू नो, या इंटेंशनली। जैसे वो तीसरा है आरंभिक अवस्था में हम लोग ठीक तरह से भक्ति को समझने का न कारण ऐसे हम लोग उसको अपरिपूर्णता से कर सकते हैं। अपराध मतलब नाम अपराध या वैष्णवों के अपराध प्रति अपराध, जीवों के प्रति अपराध या सेवा अपना धाम भी अपराध, धाम का प्रति अपराध करना। ठीक ठीक तरह से यार हम लोग ऐसे भक्ति को मिश्रित करेंगे तो वो भी वही है, वो भी अपराध भक्ति होता है। जैसे आप कुछ मिश्रित करना शुरू कर देते हैं भक्ति में, है ना, शुद्ध भक्ति में सब है। विज्ञान है ना, भक्ति एक विज्ञान है ना, है ना। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं वो जब भक्ति रसामृत सिंधु को उन्होंने अनुवाद किया द नेक्टर ऑफ डिवोशन हिंदी में, वो वही बुक वही नाम दिया ना श्री भक्ति रसामृत, वो दूसरा नाम होना चाहिए, प्रभुपाद जी ने अलग नाम दिया क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु ये समरी स्टडी है, वो भी एक लिख सकते हैं चेंजेस। तो भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी का ग्रंथ है, ये प्रभुपाद जी का ग्रंथ है, द नेक्टर ऑफ डिवोशन है ना। वो श्लोक और श्लोक के साथ अनुवाद और तात्पर्य दिया होता तो उसको वही नाम दिया तो चलेगा, जैसे भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम ऐसे देते हैं ना, लेकिन ये समरी स्टडी होता है ना। वो समरी स्टडी है, समरी स्टडी मतलब संक्षेप में सार रूप में अध्ययन। ओके, तो क्या बोल रहे थे हम, भक्ति रसम द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योग ऐसे एक कैप्शन देते हैं अंग्रेजी में, भक्ति योग का पूर्ण विज्ञान, ये विज्ञान है भक्ति योग है ना, क्या होता है ना सब कुछ। तो नेक्स्ट 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 नाइन स्टेजेस भगवद्गीता हो गया, और गीता के ऊपर टीकाएं, तो गीता के ऊपर टीकाएं ये 20वां हुए, कितना है 19वां 20 या 20 या 19 19 हो गए, 20 हो मुझे छोड़ दिया था। तो ठीक है 19, ठीक है 19। सो गीता के ऊपर टीकाएं, श्रील प्रभुपाद चौथे अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में या तीसरे श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि कई सारे गीता के ऊपर कई सारे व्याख्याएं हैं या टीकाएं या व्याख्याएं लिख सकते हैं, कमेंट्रीज, तो इसका शीर्षक व्याख्याएं भी लिख सकते हैं, गीता के ऊपर व्याख्याएं। तो कई सारे व्याख्याएं हैं, कुछ व्याख्याएं भक्तों द्वारा किया गया है और कुछ व्याख्याएं असुरों द्वारा किया गया, डीमंस प्रॉपर असुरों द्वारा की गई है। तो असुर लोग क्या करते हैं, वो लोग व्याख्या करते हैं तो वो अपने मनगणित ढंग से उसका व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ देते हैं, अर्थवाद करते करते हैं। तो संस्कृत भाषा में तो ये क्यों ऐसे असुरों का व्याख्याएं क्यों आते हैं ऐसे, वो गलत गलत व्याख्याएं क्यों आते हैं पता बताइए आप, अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया है क्यों ऐसे व्याख्याएं आते हैं, लोग ऐसे क्यों व्याख्या करते हैं? हम लोगों ने चर्चा किया ना कैसे भगवद गीता को अध्ययन करना चाहिए, पहले हम लोगों ने चर्चा किया ना, वो पालन नहीं करेंगे उसमें हम लोगों ने कई पॉइंट चर्चा किया, हम लोगों ने वो पालन नहीं करने से क्या हो जाता है, तो ऐसे गलत गलत व्याख्याएं प्रकट हो जाते हैं, लोग गलत गलत व्याख्याएं देते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे पालन नहीं करते, उसको अध्ययन करने का प्रक्रिया है उसको पालन नहीं करते हैं, गीता को समझने का जो प्रक्रिया हम लोगों ने चर्चा किया उसको पालन नहीं करते, इसलिए लोग गलत गलत व्याख्याएं देना आरंभ कर देते हैं, तो ये मूल कारण है। तो विशेष करके कभी कभी ऐसा होता है बहुत बड़े बड़े शास्त्रज्ञों ने भी भगवद गीता के ऊपर गलत गलत व्याख्याएं दी है, तो जैसे एक प्रमुख स्वामी था विवेकानंद, उसने भी उसने व्याख्या नहीं किया है लेकिन उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी भगवदगीता इंट्रोडक्शन भूमिका लिखा है भगवदगीता के ऊपर, ऐसे उसने लिखा और उसने ले लिखा है, तो वो भी एक मूर्ख था। और भगवत उसका फिलॉसफी क्या पता है, ओशो का फिलॉसफी, आप भोग करते रहो भोग करते रहो भोग करते रहो, एक दिन उससे वैराग्य आ जाएगा ऐसा, लेकिन लेकिन भगवदगीता में भगवान क्या बोलते हैं, आवृतम ज्ञान में ते न ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च, तो काम कैसे होता है, जितना आप उसको संतुष्ट करेंगे वो उतना बढ़ता जाएगा, जैसे अग्नि में आप ईंधन डालते जाएंगे तो बढ़ता कम नहीं होगा अग्नि और बढ़ता जाएगा, तो ऐसे उसका भगवदगीता में उसको किकआउट कर दिया गया, लात मार दिया गया ओशो का फिलोसफी को, राइट। तो और कौन, राधा कृष्णन, उन्होंने भी गीता के ऊपर बहुत टीका लिखा, वो बहुत बड़ा पंडित था वो। और कौन है, गांधी ने भी किया है, अमित कुमारी ने भी किया होगा, चिन्मयानंदा और तो ऐसे कई सारे पाश्चात्य देश में भी कई सारे है अलग अलग व्याख्याएं हैं, भारत में ही नहीं। जब प्रभुपाद जी ने भगवदगीता का यथारोप को प्रस्तुत किया 400 से भी ज्यादा व्याख्याएं थे भगवदगीता के ऊपर, ऐसे कहते हैं, बाद में उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसे शंकराचार्य ने भी व्याख्या की, तो कई कई इसमें से लोग बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही बड़ा पंडित थे, वो लोग संस्कृत भाषा को भी जानते थे। लेकिन क्या होता है, संस्कृत भाषा में मैं उस दिन चर्चा कर रहा था ना, दो तरह के वाक्य अर्थ होते हैं, एक मुख्य वृत्ति कहते हैं उसको, सीधा अर्थ जो शब्दकोश से डिक्शनरी मीनिंग सीधा मीनिंग होता है, और दूसरा क्या है, मनगणित मनोकल्पित अर्थ देना, गौण वृत्ति, ऐसे दो प्रकार के अर्थ होते हैं। तो कभी कभी गौण वृत्ति को भी स्वीकार किया जाता है, जब यू नो जो सीधा मुख्य वृत्ति सही अर्थ नहीं बता रहा है उस शब्द को, या सही वो आगे के पीछे के उस वाक्य के अर्थ को देखकर ग्रामेटिकल व्याकरण के अनुसार देखेंगे तो वो अर्थ ठीक तरह से नहीं लागू हो रहा है वहां पर, तो गौण वृत्ति लिया जाता है। लेकिन शंकराचार्य और ऐसे जो तथाकथित व्याख्याकार क्या कर देते हैं, वो गौण वृत्ति को लेते हैं, मुख्य वृत्ति को छोड़कर गौण वृत्ति को ले लेते हैं, तो उसके कारण कई सारे गलत व्याख्याएं है। प्रभुपाद उनको असुर बोलते हैं, क्यों असुर बोलते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का ये लोग उसको ही लेकर भगवान कृष्ण को ही मारने के लिए कोशिश करते हैं, भगवान कृष्ण अस्तित्व में नहीं है, वो एक व्यक्ति नहीं थे, वो ऐसा ही एक रूप दिया गया है, जैसे आप एक ड्रामा लिखते हैं ना, ऐसा एक पात्र को सृष्टि करते हैं, ऐसे यू नो ये विवेकानंद ने बोला है, उसने क्या वो ऐसे प्रश्न पूछता है यू नो पढ़ने वालों को, श्रोतागण को, कि क्या अर्जुन और कृष्ण जैसे जो व्यक्ति है वो अस्तित्व में थे, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो उनको क्या बोलते हैं वो लोग, उनके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। कितना अपराध है ना, बड़ा अपराध है ना। भगवान कृष्ण का पहले वो भगवद्गीता ले रहा है, उससे वो प्रवचन कर रहा है, उससे वो उसको उपयोग करके भगवान कृष्ण को ही मार देते हैं, वो अस्तित्व में है नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद ये मायावादी लोग जो विशेष करके जो मिस इंटरप्रेट करते थे, ऐसे गलत व्याख्याएं देते थे भगवद्गीता, उसके ऊपर बहुत जोर से खंडन किया उन्होंने। इसलिए उनको असुर बोलते हैं श्रील प्रभुपाद, क्योंकि भगवान को वो अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद 1939 और 50 के ईस्वी में वो उनके गुरु भाई के एक पत्रिका था, गौड़ीय पत्रिका करके, उसका प्रभुपाद एडिटर थे, एडिटर मतलब संपादक थे। उस समय पर उस गौड़ीय मठ के एक ब्रह्मचारी जब पुस्तक वितरण गए थे, वो ये राधा कृष्ण के भगवद्गीता लेकर आके दिखाया उन्होंने। विशेष करके वो 9वें अध्याय के जो 34वां श्लोक है ना, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्करो मामे वैश्यसी त्वैवं आत्मानं मत्परायण। तो उसको देखकर बहुत ही उसके तात्पर्य को देखकर बहुत ही वो दुखी हो गए, क्योंकि वहां पर वो राधा कृष्ण लिखता है, आप कृष्ण को शरण में जाने का जरूरत नहीं, कृष्ण का भक्ति करने का जरूरत नहीं, कृष्ण के अंदर से जो बोल रहा है उनके शरण में जाना चाहिए, ऐसे वो लिखता है। ये मूर्ख को इसको इतना पता नहीं है कि कृष्ण के अंदर बाहर कोई अंतर नहीं है, वायु पुराण में ऐसे बताया गया। तो देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, हमारे देह और देही में अंतर है ना, हमारे आत्मा और शरीर में अंतर है, लेकिन भगवान को ये लागू नहीं कर सकते, उनके देह और देही में ईश्वर में ऐसे नहीं होता है। नेश्वरे विद्यते क्वचित, क्योंकि भगवान के शरीर दिव्य है, आध्यात्मिक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनका शरीर भौतिक शरीर नहीं है। वो भी भौतिक शरीर लेते हैं तो माया शक्ति उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होता है ना। संभवामी आत्म माया जोपि सन्नव्ये आत्मा भूतानामीश्वरोपि सम प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्म माया, मेरे मूल आध्यात्मिक रूप में मैं प्रकट होता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। वो माया के प्रभाव में कभी नहीं है, भौतिक शक्ति के प्रभाव में कभी नहीं आते, वो ऐसे भौतिक शरीर नहीं लेते हैं। तो ये हमें जानना चाहिए, उनके बीच में शरीर और आत्मा के बीच में कोई अंतर नहीं है, पूरा आध्यात्मिक है उनका शरीर रूप, सच्चिदानंद स्वरूप है, कृष्ण है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। वो विग्रह कैसे है, सच्चिदानंद है। तो ऐसे लोग व्याख्या करते हैं, तो कभी कभी बोलते हैं कुरुक्षेत्र मतलब शरीर, ये पांच पांडव मतलब ये पांच इंद्रियां, ऐसे वो लोग बोलते हैं। तो ये क्यों ऐसे क्यों बोलने का, कुरुक्षेत्र अभी भी युद्ध भूमि है, ये ऐतिहासिक घटना है, ये भगवद्गीता और महाभारत उसके आधार पर वो लोग क्या बोल देते हैं, एक दंत कथा है भगवद्गीता, ऐसे बोल देते। तो ये सभी असुरों का व्याख्याएं है, ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे असुरों के व्याख्याएं मिलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना, मायावादी भाष्य सुनेला है सर्वनाश, मायावादियों का भाष्य नहीं हमें सुनना चाहिए। तो अभी प्रश्न उठता है फिर, मायावाद हम ऐसे बोल दिया तो मायावादी का वो ग्रंथ मत पढ़ो, मतलब आप उनके बुद्धि को बंद कर रहे है ना, यू नो इंटेलिजेंस क्वेश्चनिंग, आप बोल रहे अंधश्रद्धा से हमें ही पालन करो, ऐसे होता है। लेकिन जरूरत नहीं है उसको, मायावाद को समझने के लिए मायावादी भाष्य पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे आचार्यगण मायावाद को भी प्रस्तुत करते हैं और उसको साथ साथ खंडन करते हैं। भगवद्गीता में काफी है ना, हर एक तात्पर्य में है ना मायावाद को खंडन। हम लोग मायावाद को भी अच्छी तरह से भगवद्गीता यथारूढ़ पढ़ने से हम लोग समझ सकेंगे। और कुछ भक्तों का भी व्याख्याएं हैं, बताए कौन कौन से व्याख्याएं भक्तों का, बताइए कौन कौन महान भक्तों ने व्याख्याएं लिखी भगवद्गीता के ऊपर। हाँ गोविंद भाषा, गोविंद भाषा तो वो वेदांत सूत्र के ऊपर है। मध्वाचार्य ने लिखा, दो तात्पर्य व्याख्यान किया उन्होंने, एक गीता तात्पर्य निर्णय और दूसरा गीता भाष्य, ऐसे दो मध्वाचार्य ने किया। और उसके बाद में श्रीधर स्वामी ने, श्रीधर स्वामी तो मध्वाचार्य से भी पहले थे शायद, तो श्रीधर स्वामी इन्होंने सुबोधिनी भाष्य लिखा है गीता के ऊपर, नाम भी लिख लीजिए, भाष्यकार का भी नाम लिखे और भाष्य का भी नाम लिखे। मध्वाचार्य ने कौन कौन से दो भाष्य लिखे, गीता तात्पर्य निर्णय और गीता भाष्य। और श्रीधर स्वामी कौन सा भाष्य लिखे, सुबोधिनी भाष्य लिखा। और उसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सारार्थ वर्षिणी उसका नाम है, सारार्थ वर्षिणी का अर्थ है शावर ऑफ एसेंशियल मीनिंग्स, शावर ऑफ एसेंशियल मीनिंग्स, हिंदी हाउ यू पुट दैट, शावर ऑफ एसेंशियल मीनिंग्स, सार युक्त वर्ष, वाक्यों के वर्षा नहीं है, शव सार, सार सार युक्त मीनिंग इज नॉट वाक्य, अर्थ सार युक्त अर्थों का वर्षा, वर्षा शवर मीन्स वर्षा, सारार्थ वर्षणी। और बलदेव विद्याभूषण गीता भूषण नामक एक भाष्य व्याख्यान की, बलदेव विद्याभूषण। और भक्ति विनोद ठाकुर बंगला भाषा में दो उन्होंने भाष्य लिखे, एक रसिक रंजना दूसरा विद्वद रंजना, गीता भूषण। क्या बलदेव विद्याभूषण गीता भूषण नामक या भाष्य लिखे, और भक्ति विनोद ठाकुर रसिक रंजना और विद्वद रंजना दो भाष्य लिखा, रसिक रंजना विद्वद रंजना, वन द वन विच गिव्स प्लेजर, वन विच गिव्स प्लेजर टू द रसिक भक्तास एंड दोज हु आर स्कॉलरली डिवोटीज, विद्वद रंजना। समझ में नहीं आ रहा मुझे, जोर से बोले। ठीक है लिख सकते हैं, थोड़ा अंतर है। भाष्य का मतलब है, भाष्य का मतलब है कि उसके अर्थ को विस्तार करना, विस्तार रूप में जो कठिन है समझने के लिए उसको समझाना, तात्पर्य लिखना, तात्पर्य कहते हैं ना हम लोग, तात्पर्य सम डिफरेंस बट ओके मोर ऑर लेस, भाष्य तात्पर्य टीका में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन व्याख्यान, व्याख्यान करना उसके ऊपर है ना, और विस्तार से समझाना, देन सो रसिक रंजना विद्वद रंजना हो गया। और प्रभुपाद जी ने कौन सा लिखा, भगवद गीता यथारूप, लिख लीजिए उसको भी। ये सभी गीता के ऊपर व्याख्या है, गीतार्गान, प्रभुपाद जी बोलते गीतार्गान, बंगला भाषा वाले बहुत सौभाग्यशाली है लेकिन फायदा उठाना चाहिए है ना। ठीक है, ये भक्तों और असुरों के अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो रेफरेंसेस लिख लीजिए, टाइम हो गया। इसके लिए रेफरेंसेस कहाँ कहाँ पर वर्णन किया गया, हमें कैसे असुरों का व्याख्या उनको नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक के तात्पर्य में वर्णन हुआ है। वहाँ पर प्रभुपाद द्वारा उल्लेख करते हैं कि मायावादी भाष्य सुनेला है सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु ऐसे भाष्यों को हमें पढ़ने के लिए मना किए, वो हो गया। और दो तरह के व्याख्याओं को, असुरों का और भक्तों का व्याख्याओं का वर्णन 4वें अध्याय के 3रे श्लोक में, श्लोक के तात्पर्य में आता है। फिर मिनी रेफरेंसेस कर देते हैं, मिनी रेफरेंसेस। और 9वें अध्याय के 1ले श्लोक के तात्पर्य में, और 7वें अध्याय के 15वें श्लोक के महाया पहरत ज्ञान, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक के तात्पर्य में, वहां पर माया पहरत ज्ञान आता है ना, वर्णन आता है ना। और 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, या 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में, ग्यारहवें अध्याय का 51 और 54, 11वें अध्याय का 51 और 54, और 12वें अध्याय का 1वां 1ला श्लोक के तात्पर्य में, पहला श्लोक के तात्पर्य, और 16वें अध्याय का 1 से लेकर 3 तक उसके तात्पर्य में हुआ है। सत्यम, जब प्रभुपाद सत्यम शब्द को वर्णन करते हैं तब वहां पर हमें सत्य वाक्य वाक्य ही करना चाहिए। और 15वें अध्याय के 19वें श्लोक के तात्पर्य में, और प्रिफेस अमुक ना, भगवद्गीता के अमुक में भी है, और 18वें अध्याय का 67-68, हाँ इससे हम लोग समझ सकते हैं कितना प्रभुपाद ने खंडन किया है ये मायावाद भाष्य, हाँ 68, इस इतने सारे और भी मिल सकते हैं आपको, इतने सारे जगह पर प्रभुपाद ने इन्हें ये गलत व्याख्याओं का खंडन किया प्रभुपाद जी ने, ठीक है। तो हम लोग आगे जाके, दैट मीन्स कल सुबह, आज शाम को क्लास नहीं होगा, कल सुबह हम लोग भगवद्गीता यथारूप के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद में भगवद्गीता को प्रचार क्यों करना चाहिए, और भगवद्गीता के महात्म्य और 3 विषय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, शांति मिल। कोई प्रश्न है, कोई सुनना चाहते हैं तो प्रश्न, कोई प्रश्न कोई भी सामान्यतः भक्ति का नव स्तर है, उसके अनुसार हम लोग अलग अलग अंग भी वैसे ही करते हैं हम लोग। और कुछ प्रश्न, वो वायु पुराण से है, उसको 9वें अध्याय के 34वें श्लोक के तात्पर्य में, ओके कुर्म पुराण, सॉरी मैं ठीक है, कुर्म पुराण से है वो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में उल्लेख करते हैं, प्रभुपाद जी ने वहां से लिया, ठीक है। और कुछ मोक्ष का अर्थ है कि भौतिक कलमश से मुक्त होना, भौतिक तापत्रयों से मुक्त होना, या भगवान से भी एकाकार होना, ये सभी अर्थ आते हैं इसमें। हाँ वो भी है, लेकिन वो ठीक है, विशेष करके यहाँ पर वो भी है, लेकिन विशेष करके भगवान में एकाकार होना, या वो भी है, पांचों आते हैं इसमें, लेकिन विशेष करके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो पांचों मुक्ति से भी श्रेष्ठ है ये प्रेम। और कुछ ये सभी जो स्तर है नौ स्तर बढ़ते ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि श्रद्धा के बाद साधु संघ आता, नहीं, श्रद्धा अंतिम तक बढ़ते ही जाता है, और साधु संघ भी ऐसे ही हमेशा साधु संघ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भजन क्रिया शुरू हो गया साधु संघ छोड़ दिया। इसलिए बताता है ना चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भक्ति मूल है साधु संघ, कृष्ण प्रेम जन्मेयो ते हो पुनः मुख्य आऊंगा, इवन आफ्टर अटेनिंग द लव ऑफ गॉड ऑल्सो देन ऑल्सो दैट रिमेन्स एज अ इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक दैट, भजन क्रिया विल कंटिन्यू, भजन विल गो ऑन कंटिन्यू, इट्स नॉट दैट वी विल स्टॉप चैंटिंग हरे कृष्ण, और अनर्थ निवृत्ति भी तब तक भाव तक अनर्थ रहते हैं वो भी निवृत्ति होता है, रहता है ज़्यादा से ज़्यादा इस स्तर पर हो जाता है 70-80% लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता है, लेकिन वो ज़्यादा बाधा नहीं होते, सो ऐसे बढ़ते ही जाते हैं सब चीज़। वो चैतन्य चरितामृत के है मध्य लीला के 20वें अध्याय में है, या चैतन्य महाप्रभु वो बताते हैं, वो ओरिजिनली मध्वाचार्य के भागवत तात्पर्य निर्णय के पंचम स्कंद के तात्पर्य में आता है, 5.5.11 or 10th verse मध्वाचार्य स्कंद। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले स्कंद के प्रभुपाद जी भी वर्णन करते शायद, वो प्रभुपाद जी कहाँ पर है, प्रभुपाद जी भी वर्णन किया है उसको, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले स्कंद के पहले 2वें अध्याय के वहाँ पर 17वें से 21वें श्लोक के तात्पर्य में ऐसे सन्नताम सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन वहाँ पर कुछ वर्णन। और या आई एम स्पीकिंग स्ट्रांगली इन द सर्विस ऑफ शिला सर्विस में भी है गुड इंप्लीमेंटिंग। और ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। सो श्लोक पाठ कीजिए अच्छी तरह से, समय है तो बीच बीच में हाँ
आपको भी श्लोक पाठ करना
सभी लोग।